संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये 99 भी गाथा चलेगी, ये 99 के चक्कर में डालने वाली गाथा नहीं है, ये 99 के चक्कर से निकालने वाली गाथा है। इसमें वो महत्वपूर्ण बात दी गई है जो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में बहुत काम आती है। पूज्य गुरुदेव श्री तो बहुत बहुत ही बोलते थे, अपनी क्रमबद्ध पर्याय की किताब में भी इस कोटेशन को दिया गया है इसका। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विस्तार किरण से प्रवाह क्रम को सिद्ध किया गया है। अब ये विस्तार क्रम क्या है और ये प्रवाह क्रम क्या है, ये ऐसे शब्द हैं कि इन्हें आप समझेंगे नहीं तो इस गाथा में समझना तो बहुत दूर प्रवेश भी संभव नहीं होगा। द्रव्य की चौड़ाई को माने प्रदेशों को विस्तार कहते हैं और द्रव्य की लंबाई यानी पर्यायों को दूसरा शब्द क्या था, प्रवाह कहते हैं। प्रवाह माने बहना। अनादि काल से अनंत काल तक इन नृत्य द्रव्य नृत्य बहता चला जाता है। अब ऐसे समझना कि गंगोत्री से गंगा निकलती है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, तो वो वहां से जो निकली तो जितना भी 1500 किलोमीटर का जो रास्ता है वो एक सुनिश्चित रास्ता है, बना हुआ पुराना, वो हर पानी उस रास्ते से गुजरेगा। कोई पानी ऐसा नहीं हो सकता कि उछल के और आगे बढ़ जाए, माने वो पूरा गंगोत्री से बहता हुआ जाएगा तो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा। तो वो बह रहा है तो जिन जिन प्रदेशों में जाएगा, जैसे यूपी में जाएगा, बिहार में जाएगा, जहां जहां जाएगा उस एक एक प्रदेश है के साथ एक एक समय भी नक्की है। ये क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं कि वो जो एक समझ लो कि एक पर्टिकुलर पानी को हमने पकड़ा, एक लोटा पर्टिकुलर पानी है, तो वो अभी गंगोत्री से निकला 8 बजे, तो वो 8:01 पर कहां होगा, 8:02 पर कहां होगा, 8:03 पर कहां होगा। ऐसे यदि मान लो वो 24 घंटे में पहुंचता है तो वो किस समय कहां होगा ये भी बिल्कुल नक्की है। यदि वो गणित हम जानते हो, समझे ना, तो वो हमारी समझ में आ सकता है कि इस वक्त वो कहां होगा। आप जानते हैं कि ये आकाश में प्लेन उड़ता जा रहा है शत्रु का और हमको यहां से उसे मार गिराना है, वो चलते हुए प्लेन को, तो उसमें वो किस दिशा में जा रहा है और किस समय वो कहां पहुंचेगा इसका हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम यहां से गोली चलाएंगे और वो निकल जाएगा, यहां हमारी गोली बेकार जाएगी। हम यहां से गोली चलाएंगे तो अगले ही समय में थोड़ी उस तरफ पहुंच जाएगी, वो भी तो समय लेगी ना, तो हमारी गोली समय लेगी, वो भी दौड़ रहा है वो भी समय लेगा और फिर दोनों की दिशा वही मिलनी चाहिए जिधर वो जा रहा है, ख्याल में है ना, तब जाकर के उसको हम मार सकते हैं। और हम देखते हैं मार देते हैं, छोटे छोटे देश भी गिरा देते हैं, किसी दूर बड़े रशिया जैसे बड़े देश वाले का प्लान गिरा दिया छोटे देश ने, तो वो मतलब संभव है ना, तो वो उस गणित के आधार पर ही संभव है ना। यदि वो जो नियम है और जो उनको उस पर दिखता है कहां कहां को जा रहा है, किस जगह जा रहा है, जिससे वो निर्णय करते हैं, वो उसमें एक नियम नहीं हो सुनिश्चित, तो ऐसा ही नियम नहीं हो तो वो नहीं हो सकता है काम। इसलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब नक्की है, नहीं उसी के आधार पर ये सारे निर्णय करते हैं। अभी देखो 100 वर्ष आगे का पत्र आता है, पंचांग जानते हैं बहुत, तो 100 वर्ष आगे तक का सो गणित बना के बना देते होंगे, बना वो तो बनाते ही हैं, लेकिन 100 वर्ष आगे की तक की सब बात नक्की है ना, तब तो बनाते हैं ना। मैंने सब माने क्या, मैंने सूरज की चाल, चंद्रमा की चाल, तारों की चाल, ग्रह नक्षत्रों की चाल, यही तो उसमें लिखी रहती है तुम्हें पंचांग में, और क्या होता है ने? हमारा तुम्हारा थोड़ी कुछ लिखा रहता है ने? तो वो हर ग्रह की चाल बिल्कुल सुनिश्चित है, और वो इस गति से, इस दिशा में, इस क्रम से ऐसा ऐसा घूमता है, तो उसके आधार पर एक एक चीज लिखी जाती है। 100 वर्ष तक की बात बिल्कुल सही निकलती है, यहां तक कि वो ये कहते हैं कि चंद्र ग्रहण पड़ेगा और सूर्य ग्रहण पड़ेगा। क्यों, आप जानते हैं सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ता है, चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। पूर्णमासी को पूरा चंद्रमा होता है, वो अधूरे को नहीं ग्रसता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ेगा। अब वो इतने बजकर इतने बजे एक ग्रहण पड़ेगा, और वो कहां कितने बजे दिखेगा, मुंबई में कितने बजे दिखेगा, कलकत्ता में कितना दिखेगा, सिंगापुर में कितना दिखेगा, जापान में कितने बजे दिखेगा, फिर सान फ्रांसिस्को में कितने बजे दिखेगा, वो सब एक एक गांव के हिसाब से वो बता देते हैं कि इस गांव में इतने बजे दिखेगा, तब भी उस गांव वाले देख सकते हैं ना। और फिर ये बताएंगे कि वो आधा दिखेगा कि पाव दिखेगा कि कितना दिखेगा, वो सब भी बताते हैं। तो इसका मतलब है ये सब चीजें बहुत सुनिश्चित हैं। अब इस गाथा में क्या समझाया है कि आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं और अनंत गुण हैं, और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं। तीन काल के जितने समय हैं उतनी पर्याय हैं। तो पहले उन्हें प्रदेशों की अखंडता समझाई, प्रदेशों का क्रम समझाया, पहले हम उसे आकाश द्रव्य पर समझे, फिर अपन पढ़ भी लेंगे, घबराना नहीं, सब आकाश द्रव्य पर समझें। क्यों समझें आकाश द्रव्य पर, जीभ पर क्यों नहीं समझें? क्योंकि वो आकाश के प्रदेश जहां हैं अनादि से वही हैं, और जो जहां है वो अनंत काल तक वहीं रहने वाला है। ये आत्मा के तो इकट्ठे हो जाते हैं, हाथी के शरीर में चले जाते हैं, चींटी की में चले जाते हैं, लोक पूर्ण अवस्था में भी आ जाते हैं, तो ये भी समझा देंगे। लेकिन पहले समझने के लिए वो आकाश के प्रदेशों से हमको समझना पड़ेगा। और आकाश के प्रदेश सारे विश्व में फैले हुए हैं, तो जो प्रदेश जहां है अनादि से वो अनंत काल तक वहीं रहेगा ना, क्या वहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो है, मैंने उसमें भी एक क्रमिक तो है ना, असंख्य प्रदेश एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो जैसे वो क्रम नहीं बदला जा सकता है, बदलना चाहे कि हम दिल्ली वाला आकाश जयपुर ले आए, वो जयपुर वाला आकाश दिल्ली ले जाए, ये संभव है? ऐसा तो कर सकते हैं हम कि जयपुर में एक बढ़िया कॉलोनी बना है और उसका नाम नई दिल्ली रखें, नई दिल्ली को तो जयपुर में ला सकते हैं, समझे ना, नाम रख सकते हैं। लेकिन जो आकाश के प्रदेश जहां हैं वे तो वहीं के वहीं रहेंगे ना, तो कोई चीज बदली नहीं जा सकती है, पहले हमारे दिमाग में ये घुसना चाहिए, क्योंकि हमको बदल सकती है और हम बदल देंगे। हमको बदलने की बहुत तमन्ना है, बदलने को ही हम काम समझते हैं क्या? जब तक हम कुछ बदल नहीं पाए तो फिर हमारा मतलब ही क्या? मैं यदि मुख्यमंत्री बन जाऊं तो राजस्थान को बदल के रख दूंगा कि कभी तुम्हें नहीं बनाएंगे, कि हमें तो राजस्थान का राजस्थान ही चाहिए। क्यों, तुम राजस्थान को मध्य प्रदेश में शामिल कर लोगे तो हमें ऐसा थोड़ी चाहिए। मैंने हम बदल के रख देंगे। बदलना, बदलने की बात इतनी तेजी से दिमाग में घुसी हुई है तो थोड़ी वहां से हिलो तो, कि कोई चीज ऐसी है कि जो बदली नहीं जा सकती है? कि आकाश का जो प्रदेश, अब उनके नाम तो है नहीं, जैसे गुणों के हैं ज्ञान दर्शन चारित्र, ऐसे प्रदेशों के नाम तो है नहीं तो हम कैसे बताएं, लेकिन जो प्रदेश जहां है वो अनंत काल तक वहीं रहेगा, उनका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। यदि हम करने की कोशिश करेंगे और मान लो हमारी चल गई, तो हम जहां से जो प्रदेश निकालेंगे तो जगह तो खाली नहीं हो, उसे कहां रखेंगे? फिर दूसरी जगह जगह खाली करनी पड़ेगी, तो एक कट यहां लगाना पड़ेगा, एक कट वहां लगाना पड़ेगा, फिर वहां का जो प्रदेश निकलेगा तो उसे कहां ले जाएंगे? कि उसे दूसरी जगह ले जाएंगे तो तुम्हारा अनुभवता दूसरा जाएगा, कहां तक जाओगे? क्यों, मतलब वो संभव नहीं है। आकाशों के प्रदेशों में बदलाव संभव नहीं है, एक बात। अब कहते हैं अब आत्मा पर आओ, आत्मा के प्रदेश भी जब भी लोकाकाश प्रमाण फैल जाते हैं और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश आ जाता है, तो वो उसका स्थान जहां होता है वो स्थान उस द्रव्य में है वहां, मन किसके बाद कौन है। जब ऐसी गड्ढम गड्ढ होगी ना हाथी के चिंती की जीभ में, तो आपको पता नहीं पड़ेगा किसके बाद कौन है, क्योंकि आकाश के एक एक प्रदेश में भी 50-50 कई कई प्रदेश होंगे ना, तो नक्की निर्णय नहीं कर पाओगे। लेकिन जब वो फैल गया तो उसके अंदर जो व्यवस्थित क्रम है, मुझे स्वर्ग का है नरक का है, वो कौन प्रदेश नरक में रहेगा, कौन प्रदेश स्वर्ग में रहेगा, ऐसा ऐसा पूरा सर है क्या नहीं, एक आत्मा के सारे प्रदेश सारे तीन लोगों में फैलेंगे, विचार करो। जैसे अब उन्हें बदलना संभव नहीं है, तो कहते हैं कि जब वो आकर के एक हाथी के शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे तब तो एक के ऊपर दूसरे चढ़ जाएगा, कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन उस वक्त उनका क्रम नहीं बदलेगा, फिर भी उसे फैलाओगे तो वो जब आकाश के जिस प्रदेश पर जो प्रदेश था वो उस प्रदेश पर वही प्रदेश होगा। ये सब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माने उनका क्रम नहीं बदल जाता है। ये रूमाल है, इसमें कपड़ा होता है ना, तो एक ताना होता है एक बाना होता है, ताना बाना समझते हो? शांति जी ने भी समझाया था एक दिन, जो ऐसा खड़ा लगा रहता है ताना हुआ आकर के, उसे ताना बोलते हैं, और जिससे बुनते हैं ऐसा उसे बाना बोलते हैं, बुनने वाला। तो ये इनका यहां से एक क्रम नक्की है ना, अब इनके नाम रख लो चाहे तुम जितने भी कहेंगे, एक एक सूत का नाम रख लो। अब वो जिस क्रम में है तो इसको मैंने ऐसा कर दिया तो क्रम बदल गया होगा, इतनी सी बात है कि वो कितना ही वो हो जाए लेकिन अंदर से उनका क्रम नहीं बदलेगा, जिसके बाद जो होगा वो ही होगा, नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाता। जैसे हमने कोई साड़ी बना रहे हैं तो हमने किनारी बनाने के लिए कोई अलग धागा डाला है, बीच बीच में कोई फूल बनाने के लिए अलग धागा डाला, ऐसे डालते होंगे कुछ ना कुछ करते होंगे ना ऐसा उसमें, तो वो बीच में गड़बड़ हो जाए यदि यहां वहां कुछ भी करने से तो फिर वो सब फूल मिट जाएंगे, धारियां नहीं रहेंगी, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। घड़ी करके साड़ी जब उसमें सूटकेस में रखेंगे तब अलग फूल होंगे उसमें, और जब निकालेंगे तब अलग हो जाएंगे। तो आपको पक्का भरोसा है ना कि उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे वो कैसी ही पोजीशन में हो जाए, उनका वो क्षेत्रगत स्थान जो सुनिश्चित है, प्रदेशों का जो क्रम, प्रदेशों के क्रम को यहां क्या कह रहे हैं, विस्तार क्रम, उसको विस्तार नाम दे रहे हैं। क्यों, वो फैल जाएगा ना, लोक पूर्ण हो जाएगा तो विस्तार ही कहलाएगा ना, इतना इस विस्तार में ये फैला हुआ है। जैसे विस्तार में एक क्रम है, उसे बोलते हैं विस्तार क्रम, और उस विस्तार क्रम को बदलना संभव नहीं है। यद्यपि विस्तार क्रम को बदलने का हमारे पास कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बदलने से हमें कोई आत्मा में सुख दुख तो होता नहीं। हमको ऐसा करना, ये नहीं करना, कोई चीज हमें पसंद हो, कोई चीज हमें पसंद नहीं हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, समझे ना। इसलिए वो बदल भी जाता तो हमें क्या फर्क पड़ता, लेकिन हमें तो ये समझाना है कि वो बदलता नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि वो अनंत काल तक वो उनका जो क्रम है वो वैसा ही रहेगा। ये विस्तार क्रम को समझाने की बात हुई, माने प्रदेशों का क्रम वस्तु में एक सुनिश्चित है, आसमेंगे ना। अब ये कहते हैं कि अनादि काल से अनंत काल तक जो पर्याय हैं, तो एक एक समय में एक एक पर्याय है, तो उनका भी एक क्रम व्यवस्थित है कि जिस समय में जो पर्याय होनी है उस समय में वही पर्याय होगी। अब इसमें हमको जरा ये है कि हमको कोई पर्याय इष्ट है, कोई पर्याय अनिष्ट है। सुन रखा है कि स्वर्गों में बहुत आनंद है, सर्वार्थ सिद्धि में तो मजा आ जाता है, तो हमें वो चाहिए है, नरक से हमें डर लगता है, इसलिए हमें बदलाव। पर्यायों में बदला बदली का हमारा भाव बनता है, क्योंकि वो बदला बदली से सुख दुख का संबंध है। प्रदेश तो कैसे ही रहे तो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो पर्यायों में वो कहते जैसे प्रदेशों में क्रम है, विस्तार क्रम में उसमें एक अनुस्यूति से रचित प्रवाह है। ये अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सूति क्या है, अनुस्यूति, ये जो इसमें डोरा है ना, डोरा, और जो सुई से डाला जाता है उसे बोलते अनुस्यूति, माने सुई से डाला गया डोरा। वो इसको हमने सी दी दो कपड़ों को आपस में, ऐसी आदि काल से लेकर और अनंत काल तक की जो पर्याय हैं वो एक डोरे में पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसने मोती की माला दी है, और मैं जब समझाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मोती की माला संगमरमर की माला लो, संगमरमर के मोती बनाओ। क्यों, जब वो मैं समझाऊंगा तब बताऊंगा क्यों। वो उसमें वो सूत मन ऐसे मोती के जो सूत में परोए हुए हैं उन्हें बोलेंगे अनुस्यूत, समझ में आई ना। तो ऐसे वस्तु का स्वभाव में एक सूत है जिसका नाम है द्रव्य, वो द्रव्य नाम के सूत में प्रत्येक जो पर्याय है ना, उत्पाद व्यय जो होती हैं वो उसमें बिल्कुल परोई हुई हैं। अब डोरा उसमें तो अलग अलग होती है ना, कभी डोरा टूट जाए तो सब बिखर जाए, ऐसी ऐसा कभी बिखरने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं वो संगमरमर की डोरा, संगमरमर की पर्याय, माने उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। समझे, ये दोनों उंगलियां बिल्कुल मिली हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये नहीं आए समझ में तो वैसा समझना जैसे सरल रेखा में लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है, उसको कौन चार नंबर की पेंसिल से लेन खींची जाती है ना, चार 4H, आजकल चलती कि नहीं चलती है? वो हमारे जमाने में 4H नाम की एक पेंसिल आती थी, उसमें 4H लिखे रहते थे, तो बहुत बारीक नोक उसकी हो जाती थी, तो उसे मतलब उसमें मोटाई आनी नहीं चाहिए, लेन खिंच जाए और मोटाई नहीं आए कैसे हो सकता है? यदि बहुत मोटी पेंसिल से करेंगे तो बहुत बड़ी खिंच जाएगी, तो उससे खींचते थे, इसमें चौड़ाई हो ही नहीं। माने उन दोनों पर्याय दो अलग अलग तो हैं वे, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वे अनुस्यूति से रचित प्रवाह में जुड़ी हुई हैं, मतलब वे अलग नहीं हो सकती, ऐसी जुड़ी हुई हैं, नहीं हो सकती एक ही कहो ना, नहीं है अलग अलग, समझे ना? अनुस्यूति से रचित उनके बीच में एक प्रवाह है। तो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक अब वो एक उनकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है प्रत्येक द्रव्य की। किसने बनाई ये हमारे यहां समस्या नहीं है, ईश्वरवादियों के यहां ये समस्या है कि वो अनादिकाल से ही बनी हुई है। अब हमारी बात तो सिर्फ यहां से शुरू होती है, उसे जो आपने कल परसों पढ़ा था ना, जो अनादि होता है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप सिद्ध होता है, समझे ना? तो ये सिद्ध है कि वो अब हमने चाहते कि पर्याय बदल जाए, तो हमने कहा बदल जाए भैया, तो ठीक है तुम बैठो शांति से और हम कोशिश करते हैं क्या हो सकता है, कि कौन सी पर्याय बदलनी है, जो 10 साल पहले हुई थी, तुम बच्चे थे और जब खेल रहे थे तो चोट लगी थी और वो खून निकला था, अस्पताल में ले गए थे, वो बदलनी है, कौन बदलनी है बोला है? कि वो तो हो गई है, उसको क्या बदलने, बंधड़ समस्या तो निपटी कि भूतकाल की कोई पर्याय बदली नहीं जा सकती है? रिकॉर्ड में से निकाल दे, बोलते लोकसभा में कोई गाली बक देता है ना तो झगड़ा होता है कि लोकसभा में ये गाली नहीं बकी जा सकती है, वहां कानून बनाया कि कौन कौन शब्द हैं वो संसदीय हैं और कौन से शब्द संसदीय नहीं हैं, किसी को बदमाश कह सकते हैं कि नहीं कह, इस न के एक एक बात कि आप किसी को बदमाश नहीं कह सकते, वो बदमाश हो भले ही अब कोई कह देता है, क्योंकि हरेक को तो पता नहीं है कि ये संसदीय शब्द है कि नहीं, वो डिक्शनरी हरेक ने तो पढ़ी नहीं है, लट्ठे छाप पहुंच जाते हैं वहां है? बग देते हैं कुछ भी, तो फिर क्या इलाज है? तो एक ही व्यवस्था है कि इसे संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाए, तो संसद की कार्रवाई का जो रिकॉर्ड बनता है ना, वो जो हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहेगा, कभी देखना होगा तो निकालेंगे, तो उसमें से निकाल दिया जाए, मैंने उसमें नहीं रहे, ये बदमाश शब्द नहीं रहे उसमें कि फला आदमी ने बदमाश कहा था, कि संसद में के उसमें से निकाल दो, तो ऐसी यहां कोई व्यवस्था नहीं है कि रिकॉर्ड में से भी नहीं निकलेगी, वो भूतकाल की जितनी पर्याय हैं वो सब रिकॉर्ड हैं, कभी काम आ सकती हैं, यहां देखी जा सकती हैं, पुरानी फाइलें हैं ना 50-100 वर्ष की, तो फाइलें देखी सुभाष चंद्र बोस कैसे मरे थे, फाइलों में दबा है तो फाइलें में से निकाल के देखा जा सकता है, लेकिन आज तक निकाल के किसी ने देखा नहीं, कि देख लें तो राजनीति कैसे करेंगे, जब चुनाव का मौका आएगा तब इसे निकालेंगे, हो हल्ला करेंगे कि इनने मरवा दिया, उनने मरवा दिया, इनने इस दवा दिया, उनने ये कर दिया, अपने स्वार्थ के पीछे, यदि वे नहीं दबाते और ये होते तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, क्यों? अब साहब लंदन में मिला है, उनने कहा कि एक प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें उन्हें चोट आ गई थी, उस चोट के कारण वो मरे हैं, ऐसा रिकॉर्ड वहां मिल गया लंदन में, बहुत अच्छा। और चुनाव का टाइम आएगा कि हम नहीं मानते, ये लंदन वाले सब बलत देते हैं, फिर नहीं मानेंगे, मान लेने तो क्या फायदा, जैसे जैसे बेईमान है ना, हम भी उससे कम बेईमान नहीं है, हमको भी अपनी इच्छाओं से भूतकाल में ऐसी ऐसी पर्याय हो गई कि उसमें ये आया कि आप साथ में नरक में थे और आपने खूब डंडे पड़े थे, तो कहते रिकार्ड से निकाल दो नहीं तो कोई भविष्य का सर्वज्ञ आएगा और वो हमारी जैसे महावीर की कहानी ढील से शुरू कर देते हैं, मारी से शुरू कर देते हैं और कहां कहां डंडा खाए, कहां कहां गए, क्यों वो सब बता देते हैं। अब भगवान है भगवान, अब क्या पूरा रिकॉर्ड तो देखो इतना इतना खराब रिकॉर्ड था शांति जी, फिर भी वे भगवान बन गए पुराना रिकॉर्ड खराब होने से वर्तमान की पर्याय कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों पर्याय बिल्कुल पृथक पृथक हैं, ये पृथकता सिद्ध कर रहे हैं उनकी, क्या समझे ना। इसलिए हम महावीर की पर्याय की पूजा भी करते रहेंगे और मारीच की पर्याय की निंदा भी करते रहेंगे, हम दोनों काम करेंगे कि उन पर बिल्कुल जुदी जुदी हैं। तब कहेंगे भैया तुम्हें पर्याय दृष्टि को जरा गौण करो और द्रव्य दृष्टि निकालो। वो द्रव्य दृष्टि में निकला कि ये आत्मा, वो मारीच का जो आत्मा था वो ही आत्मा है, क्यों तो वो थोड़ा राग द्वेष कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए द्रव्य दृष्टि करने को बोलते हैं और पर्याय दृष्टि को निकालने को बोलते हैं। तब भूतकाल का काम तो निबट गया क्योंकि अब बदला बदली तो नहीं हो सकती, आज की बात जाने दो, लेकिन अब वस्तु में जो हो गया वो तो हो गया। अब कहते हैं भविष्य की, तो बहुत से लोग तो मानते हैं भविष्य के भी नक्की नहीं है, तो उनके यहां भी बदला बदली की बात कहां रही कि हम बदल दें। पहले तो ये कहें कि हम अब जैसी चाहें वैसी पर्याय लाएं, हम अपनी हम बनाए, हमें बनाना है, भविष्य की तो नक्की है ही नहीं, वर्तमान तो एक समय का होता है, तो वो जो कुछ है सो आ ही गया है। तो ये बता रहे हैं कि भविष्य की भी सब पर्याय मोक्ष तक जाने की सब नक्की हैं और फिर वहां अनंत काल तक वैसी की वैसी पर्याय होती रहेंगी, ये भी नक्की है। यदि सब नक्की नहीं होता तो हम ये कैसे कह सकते थे कि एक बार मोक्ष हो गया तो फिर लौट के संसार में नहीं आता। हम तो बुला लेते, पारसनाथ को तो बुला ही लेते, एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को नहीं बुलाते, तो सपने में बुला लेते कि भगवान आ गए और उन्होंने मेरे से ऐसा कहा ऐसा कहा कि सपनों को तो हमें कोई नहीं रोक सकता है ना। तो वो कहते हैं भविष्य की जो अनंत अनंत पर्याय हैं वो एक एक समय में बिल्कुल सुनिश्चित हैं, एक एक गुण की, देखो ध्यान देखो कितना कितना बड़ा काम है। अनंत तो द्रव्य, जीव ही अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुण है, कितने द्रव्य हुए सोचो, फिर एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण और एक एक गुण में अनंत अनंत पर्याय, तो कितनी पर्याय हुई। हर द्रव्य की हर समय की पर्याय नक्की है कि ये समय कौन होगी। अब तुम कह हमें तो बदलने का अधिकार नहीं थे, यदि इतनी व्यवस्था देखो तो ये ऐसी घबराहट होती कि हाय राम इतना को धुने को बने और यदि बदलने का काम भी फिर शुरू हो जाए तो क्या होगा बोलो आप। चुनाव में वोटर लिस्ट बन रही है और जिस तरह की बन रही है, जितने जल्दी चुनाव है उस वक्त ज्यादा करके वोटर लिस्ट को फाइनल करना ही मुश्किल हो रहा है। अब तुम कहोगे उसमें बदला बदली करो तो भैया वो नहीं हो सकता किसी कीमत पर, समझ रहे। माने ये काम अपने आप में कितना है, तो उसमें अभी कह साहब एक जरा सी बात है कि मेरी जो मोक्ष नाम की पर्याय है ना, है ना मेरे में, कि हाँ हर भव्य जीव में है, तो उस मोक्षनाथ की पर्याय को जरा जल्दी ले आओ, मैं अगले ही भव में चला जाऊं। इस भव में क्यों नहीं जाना चाहता है? इस भव में जाऊंगा तो मरना पड़ेगा ना, अभी मैं मरना नहीं चाहता। क्यों? तू तो कहता हम अभी भेज दें। क्या नहीं, अभी तो नहीं। तो उससे मोक्ष की पर्याय जिस समय है उसे वहां से तोड़ना पड़ेगी। एक कर्तव्य द्रव्य में वहां पड़ जाएगा, फिर जहां तुझे चाहिए यहां एक कट लगाना पड़ेगा, वहां जोड़नी पड़ेगी। वहां जो जगह पर्याय होगी मानो गधे की पर्याय है, तो उस गधे की पर्याय को कहां ले जाएंगे? ये आता किसी गधे की समझ में कि नहीं? कि ये पर्यायों के सिलसिले उन्होंने एक सेकंड में कह दी कि बदल सकते बदल नहीं सकते। वो बदलने की व्यवस्था में कितनी बड़ी बात है। तो वो संभव नहीं है। तो कहते हैं विस्तार क्रम का, प्रदेशों के विस्तार क्रम का जो प्रवाह है, प्रवाह है उसमें जैसे एक एक प्रदेश के स्थान को बदला नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रवाह क्रम में जो पर्यायों का जहां जो स्थान है उसको किसी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। ये वस्तु का स्वभाव है। ये प्रकरण जो चल रहा प्रवचन सार में, वस्तु के उत्पाद व्यय ध्रुव का परिणति का स्वभाव क्या है? द्रव्य तो अनादि अनंत एक से ही है, उसमें तो कोई बदला बदली का काम नहीं है, गुणों में भी नहीं है, तो वहां तो झगड़ा खड़ा ही नहीं होता है। अब पर्याय बदलती है तो जो बदलता है हम उसके पीछे पड़ते हैं। एक ऑफिसर के बारे में ऐसा सिद्ध हो कि जो किसी कीमत पर गलत काम नहीं करेगा, ना घूस लेगा, तुम राज सौंप दो तो नहीं लेगा, ना तरक्की लेगा, ना सिफारिश लेगा, प्रधानमंत्री का फोन आया तो नहीं सुनूंगा, तो वो बहुत आराम से जिंदगी जीता है, उसे कोई परेशान नहीं करता। एक सच्ची घटना है, अपने ही पड़ोस है नहीं, ये इस तरफ कौन सा है वो अपना कंबर भवन के आगे का, उस फ्लैट में एक ऑफिसर आए थे, संचेती से नाम था उनका, संचेती। वो बिजली डिपार्टमेंट के सबसे बड़े राजस्थान के ऑफिसर थे और केंद्र से आए थे, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट में बहुत गड़बड़ियां चल रही थी, तो उन जैसा कड़क ऑफिसर चाहिए था। तो केंद्र से उन्हें भेजा गया था कि यहां के सारे बिजली डिपार्टमेंट को ठीक करना। वो संचेती थे, माने देखा श्वेतांबर जैन थे, और वो यहां घूमने जाया करते थे, पति पत्नी दोनों, कभी अकेले भी जाते थे, हाथ में एक डंडा लेकर छोटा सा यहां घूमने जाते थे, हमको घूमने में मिलते थे। बनारसी दास के बहुत भगत थे, तो बनारसी दास का नाटक समय सार बहुत पढ़ा करते थे, उन्हें गाते थे, उन्हें अच्छा लगता था, अपने घर में रखा हुआ था, तो उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये संस्था है और ये भी बनारसी दास की भगत है, और ऐसे सब बातें मालूम पड़ी तो इनको बात्सल भाव हो गया, हमारा उनकी थोड़ी दोस्ती हो गई। मिलते थे घूमने में ही मिलते थे, ज्यादा हम उनके घर गए हों कि भाई हमारे घर आए हों ऐसा ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइप के नेचर के ही आदमी नहीं थे, उनसे कोई आदमी मिलता ही नहीं था, बोलता ही नहीं था। मैं ये बता रहा हूं कि कितना आराम है इसको स्वीकार करने में कि बदल नहीं सकते। तो अपने दो आदमी थे, एक विज्ञान चंद जी भारल है ना, यहां रहते हैं, नाम सुना होगा तुमने, वहीं बाबूनगर में ही रहते हैं, ये भी बिजली डिपार्टमेंट में बहुत बड़े ऑफिसर थे। पर एक सोहनलाल जी, ये प्रमोद जी है ना, उनके ससुर, वे भी एक ऑफिसर थे, मतलब थोड़े थे, छोटे थे, ये दोनों अपने मिलने वाले खास मित्र थे। तुझे आए कि साहब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो सब संचेती जी के हाथ में है। बहुत बात नहीं करी, तो मैंने कहा संचेती जी से कुछ कहना है, बोलो कुछ कहना हो संचेती जी से, मैं नाम ले लेके बता रहा हूं सबके, हो सकता सभी जिंदा होंगे अभी, समझ रहे, संचेती जी भी होंगे, रिटायर्ड हो गए होंगे, कहीं बैठे होंगे, तो है नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप नाम मत लेना, नहीं तो हवाई खटिया खड़ी हो जाएगी, फिर न मालूम कहां फेंक देंगे। जैसलमेर के किनारे पे पाकिस्तान की तीरगी पे मैं सिफारस जिसकी आ गई बस उसकी अब बहुत दुर्दशा होने वाली है। सिफारस क्या कहलाया, क्यों कहलाया, वो कुछ नहीं, उससे तो कुछ नहीं कहेंगे। हम कहेंगे संजय दीदी से, वो प्रेम से सुन लेंगे, नोट कर लेंगे, नाम नाम नोट कर लेंगे, सब चीज नोट कर लेंगे, फिर उसकी कैसी होगी, फिर उसको ऑर्डर मिलेंगे क्या। तो वो कह मत देना, नाम मत ले देना। उस दिन मुझे समझ में आया कि देखो कितना आराम है कि हमको नई कोई चेंज नहीं करना, और नई तरफ ये बदल दो, इसको बदल दो, यहां बदल दो, वो आएगा, उसकी सिफारिश आएगी, फिर उसकी आएगी, फिर हर एक आदमी तो आता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश ले आता है। इस रेल में बैठा बैठा एक आदमी को लगता है कि मेरे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो रेल मंत्री को क्या कह देता है वो, व्हाट्सअप क्या होता तुम्हारा, मैं तो जान नाम भी नहीं जानता, करना बनना तो बहुत दूध। मैंने कहा मेरे फोन में 5000 व्हाट्सअप पड़े हैं, मैंने एक भी नहीं देखा। उसमें गिनती आती रहती है और मुझे बार बार इतने पड़े हैं, जब तक हटाओ नहीं वो हटता ही नहीं है, ओके पे दबाओ तो वो हटता है। कभी आपने जान लिए इतने पड़े हैं, आप जान लिए क्या करें। तो वो यानी हमारा ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत कि इसमें किसी कीमत पर कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, इसे कितना बड़ा लाभदायक है समझो ना, फिर वो आराम से रह सकता है, समय सार का पाठ कर सकता है, बनारसी दास के नाटक समय सार का समझे ना, ये कितने इससे रह सकता है आप बोलिए। बहुत कुछ अपना भी ऐसा ही नेचर है, इसलिए अपन भी इतने आराम से यहां रहते हैं। ये कोई लोग मेरे से कहते हैं कि देखो भाई, मैं कह देखो गड़बड़ मत करो, मैं यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी के हो ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी के नहीं कहलाओगे, तो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बीच में रहना, सैकड़ों विद्यार्थी चारों तरफ रहते हो, कोई आसान काम है क्यों। लेकिन मैं रहता हूं शांति से, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। मैंने कहा देखो एक दफे ये मामला बिगड़ा तो फिर बिगड़ा, ऐसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, इसलिए गुब्बारे में छेद मत करो, गुब्बारे को फूला रहने दो ऐसे ही, इसी में मजा है। ऐसे ही तुमने पर्यायों के साथ छेड़खानी की तो अनंत आकुलता के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं। मैंने इस गाथा के संदर्भ में आपको इतना बताया, अब अपन पढ़ते हैं, करो गाथा पढ़ो।
अथे सुसो सहावो ठेदि संभव डास संभक्तो स्वभाव में तेत द्रव्य सत्य सत्य द्रव्य का परिणाम जो उत्पाद व्यय ध्रुव सहित है वही पदार्थ स्वभाव है।
इस गाथा में और इसके पद्यानुवाद में आपको ऐसा कुछ लगता है जो मैंने इतनी देर समझाया है इसमें ये कुछ लिखा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखता है इसमें, इसमें तो कुछ सीधी सी बात ही नहीं है, है? न वो अनुस्थिति से रचित प्रवाह है, न विस्तार क्रम है, न प्रवाह क्रम है, कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है कि द्रव्य का जो सत्स्वरूप है वो द्रव्य उसका स्वभाव है, वो एक पर्याय जाती है, एक पर्याय आती है और एक पर्याय वो ध्रुव रहती है, कौन तो वो उत्पाद वे ध्रुव। ये बात है इसमें, अभी लोग हम समझते नहीं। एक जगह ऐसा लिखा था कि देखो पर्याय की दृष्टि से उत्पाद होता है और व्यय होता है, और ध्रुव की दृष्टि से ध्रुव रहता है ऐसा। फिर दूसरी जगह लिखा था एक पर्याय से उत्पाद होता है, दूसरी पर्याय से व्यय होता है, तीसरी पर्याय का धर्म होता, वो भी पर्याय से लिखा था, क्योंकि तो तीनों पर्याय निकल गए, द्रव्य कहा है, तो गुण है ना, पर्याय की दृष्टि से उत्पादित है और गुण की दृष्टि से द्रव्य है ना। देखिए पर्याय माने वहां अपेक्षा है, एक पर्याय से माने एक अपेक्षा से, दूसरी पर्याय से माने दूसरी अपेक्षा से, और तीसरी पर्याय माने तीसरी अपेक्षा से, समझा। पर्याय शब्द के प्रयोग अपेक्षा के अर्थ में भी होता है। तो आपको इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है, अमृतचंद को दिखता है। अमृतचंद ने टीका में वो बात निकाली है, और फिर अब टीका अच्छी तरह से पढ़ें और उसका अर्थ आपके समझ में आ जाए, और फिर पढ़ें तो फिर निकलेगा, क्या फिर निकलेगा इसमें से। देखो टीका पढ़ते हैं, इसलिए सदा स्वभाव में ठहरा होने से द्रव्य सत है। कोई भी पदार्थ सत क्यों कहलाता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थित है, मतलब सीधी सच्ची बात है कि है वो स्थित है, ऐसा लगता है कोई आगे ठहरा, पर वो है अपने स्वभाव, हर पदार्थ अपने स्वभाव में स्थित है, माने वो स्वभाव ही का नाम पदार्थ है, वो वैसा ही है। क्या द्रव्य का स्वभाव द्रव्य उत्पाद और व्यय की एकता रूप परिणाम है। देखो परिणाम का अर्थ अकेला पर्याय नहीं होता है, परिणाम का अर्थ पर्याय भी होता है, गुण भी होता है, द्रव्य भी होता है। भाव का अर्थ होता है ना, भाव माने द्रव्य भी होता है, भाव माने गुण भी होता है, भाव माने पर्याय भी होता है। अब कहते जिसके जैसे भाव हों वैसा करो, बोलते कि नहीं बोलते। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु, अब ये आ रही वो बात जो मैंने अभी समझाई आपको, वास्तु काय को बोलते हैं, गुजरात में जो मकान का उद्घाटन वगैरह करते हैं ना उसको वास्तु बोलते हैं। वास्तव में बिल्डिंग बनाते हैं, वो बिल्डिंग का नाम वास्तु है। ये जो लोग कुछ आजकल धंधा एक नया चल गया ना, वो वास्तु वाला धंधा, वास्तु वाला समझ गए ना तुम, किसका मुंह कहां को रखना है, कैसा रखना, ये करना ये करना ये करना। तो जिस द्रव्य का जो वास्तु माने वस्तुपना, जो वो है ना, जो उसका क्षेत्र है, समझ गया ना। वास्तु समग्रपने एक होने पर भी वो वास्तव में तो एक है बस, वो वास्तु माने अनादि अनंत वो भी, और जो असंख्य प्रदेश वाला मिला हुआ है वो भी। अब वो वास्तु विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं। ये प्रदेश की परिभाषा देखो, अब वो उसे फैला दो और उसे सबसे छोटा से छोटा हिस्सा है उसे प्रदेश कहते हैं। वास्तु का नहीं, वास्तु के विस्तार क्रम का जो छोटे से छोटा अंश है वो प्रदेश है, और उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे पर्याय हैं, परिणाम हैं। ऊपर लिखा है वास्तु और उसके बदले में इसमें लिखा है वृत्ति। जब पर्याय के संदर्भ में ये बात करते हैं तो उसे कहते हैं उसकी वृत्ति ही ऐसी है। वृत्ति माने स्वभाव, अपन बोलते हैं ना, एक है वृत्ति और प्रवृत्ति, जब अपन बोलते हैं ना चारित्र के संबंध में कि उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों बहुत अच्छी हैं। वृत्ति माने वो स्वभाव, कौन सा स्वभाव कि किस परिस्थिति में वो क्या करेगा, ये पहले से ही हम जान लें उसके स्वभाव को देखकर, वो उसकी वृत्ति है। और प्रवृत्ति कि जो उसने अभी वर्तमान में किसी चीज में अपना प्रयोग किया है, प्रवृत्त हो गया है, माने वर्तमान पर्याय में प्रवृत्त होना वो, और जो कंटिन्यूटी में जैसा उसका नेचर है उसे बोलते वृत्ति और वृत्ति और प्रवृत्ति। तो ये पर्याय के बारे में वृत्ति और प्रदेश के बारे में वास्तु, और वास्तु का सबसे छोटा बड़ा अंश है वो प्रदेश है, और वृत्ति का छोटा से छोटा अंश है वो पर्याय है, हो गया। जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, कि विस्तार में क्रम काय को डालना, क्रम के क्रम का चक्कर बीच में क्यों डालना, तो कहते हैं कि देखो इसके जितने ये प्रदेश है ना यहां से यहां तक एक ही है ये तो, लेकिन प्रदेश अलग अलग हैं, और इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, समझ गए ना। इसको क्या बोलते हैं, व्यतिरेक है? समझ गए वो होगी। विस्तार क्रम के प्रदेशों का जो परस्पर व्यतिरेक है, उसमें जितने प्रदेश हैं वो वे अंदर में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अन्य हैं, उनमें जो व्यतिरेक है ना, याद है तुम्हें कौन सी गाथा में था वो, अन्वय सु द्रव्य, अन्वय का विशेषण सु गुण, और अन्वय का व्यतिरेक सु पर्याय, है 80वीं गाथा में था ना, द्रिवगुण पर्याय की परिभाषा। परस्पर व्यतिरेक प्रदेशों का जो व्यतिरेक है उसी प्रकार, इसको बनाया उदाहरण, जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण, विस्तार क्रम का कारण क्या है कि प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक, यदि परस्पर व्यतिरेक नहीं होता प्रदेशों में तो ये विस्तार क्रम नहीं होता। देखो ये इतने इतने इसमें डोरे हैं ना, मान लो एक ऐसी लकड़ी होती है, ऐसी लकड़ी बिल्कुल वो कड़क एकदम, वो बिल्कुल वो नहीं हो सकती है, और फिर उन दोनों को हमने से पो दिया होता तो वो ऐसी मुड़ जाती है, क्योंकि वे अलग अलग हैं। यदि वो एक ही होती तो फिर वो ऐसी ही अकड़ के रह जाती है, समझ आए क्या नहीं आए, तो वो उसके मुड़ने का कारण क्या है, प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक, जो उसमें लचीलापन है वो प्रदेशों के परस्पर व्यतिरेक से आया है। तो जैसे उसमें है ऐसे ही वृत्ति में जो क्रम है वो उनमें भी व्यतिरेक कारण है। व्यतिरेक कारण है माने क्या, कि एक पर्याय ने दूसरी पर्याय के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये तो है इसके बाद ही होगी, इसके बाद ही होगी, लेकिन वो भिन्न भिन्न भी हैं। इस स्वरूप समझ में आना चाहिए। अब ये कहते कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, यदि वो भिन्न भिन्न है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इकट्ठी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो जैसी है उसको समझो क्या होना चाहिए, ये तुम चरणानी योग को छोड़ दो, वो चरणानी योग वालों को करने दो, ये तो है वाली क्लास है। काहे की है कि उनमें परस्पर अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है, अन्वय के कारण वे टूट नहीं सकते और व्यतिरेक के कारण मुड़ सकते हैं, मैंने पर्यायों को मोड़ सकते आधार नहीं निकालना, मैंने उनमें के स्वभाव में ऐसी चीज पड़ी है। देखो क्या, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप में से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहारात्मक संहार द्रव्यात्मक हैं प्रदेशों की अपेक्षा, उसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसर में स्वरूप में उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से और सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह पने के द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक हैं। उदाहरण बनाया, अब आचार्य देव को तो लगता है वो सरल है और जी कठिन है, अब हमें तो दो ही एक से लग रहे हैं। सरल क्यों बता रहे, इसको कठिन क्यों बता रहे, इन्होंने साहब क्यों मत बताई किताब में लिखा है, ऐसा प्रश्न किया है उसका उत्तर। नहीं भी लिखा होगा तो अभी सुन लो कि प्रदेश तो अभी है ना, वे असंख्य प्रदेश हमारे आत्मा के हैं, वे सभी अभी हैं। तो अभी होने से वो हमारे ज्यादा मतलब सामने होने से समझने समझाने में सुविधा ज्यादा है। वो पर्याय तो अकेली एक है, अनंत काल पीछे कहीं से नष्ट हो गए, वो भविष्य की उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए वो कठिन है। समझ गया, पर्यायों का प्रवाह समझाना कठिन है और प्रदेशों का समझाना सरल है, क्योंकि ये रूमाल प्रदेशों के काम तो आ गया, क्योंकि अब ये भी मौजूद है ना सब इसके अंदर ताना बाना। अब पर्यायों में ऐसा नहीं है, इसलिए वो कठिन है। तो तुमको प्रदेशों का प्रवाह समझ में आ जाए तो पर्यायों का प्रवाह भी समझ में आ जाएगा। मेरी समझ में बहुत दिनों तक नहीं आया, जब चर्चा करती थी कि साहब प्रदेश प्रदेश तो आत्मा में है, शामिल है दृष्टि के विषय में और गुण भी शामिल हैं, लेकिन पर्याय शामिल नहीं है। तो मैं दिव्य क्षेत्रकाल भाव से समझने वाला पढ़ने वाला आदमी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो शांति जी, जो दृष्टि गुणों और प्रदेशों पर लगेगी वो गारंटी से पर्याय पर भी लगेगी। तो इसका झगड़ा मैं कम से कम 50 साल से और भी ज्यादा साल से लड़ता आ रहा हूं। सबसे पहले सोनग्रह में किसी विद्वान का व्याख्यान नहीं होता था, परमिशन नहीं मिलती थी गुरुदेव की प्रख्यानों के अलावा। सबसे पहले मेरे को परमिशन मिली थी, शाम के टाइम में एक हॉल था प्रवचन मंडप कहलाता था, उस मंडप में मेरे प्रवचन होते थे और रात्रि में महिलाओं को किसी सभा में जाने की परमिशन नहीं थी। सबसे पहली मेरी सभा में आने की महिलाओं को भी परमिशन मिली थी सोनगढ़ में। तो उसमें मैं पढ़ता था तो लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, तकलीफ बहुत होती थी क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली, और मिली तो एक निहाल क्या नाम था, हाँ नवल भाई, एक नवल भाई करके थे। तो वो बहुत अपने को अध्यात्मी मानते थे, उनकी क्लास जैसे बहुत लोग बैठते थे और बहुत वैसे प्रसिद्ध आदमी थे नवल भाई। तो कह गए ये पंडित हुकुमचंद पर्यायों को दृष्टि के विषय में शामिल कर रहा है, क्या इससे ये पूछो। ये चक्कर चलता था कि पर्याय को दृष्टि के विषय, क्योंकि मैं ये बात समझाता था क्या कि अखंड प्रवाह जो है पर्यायों का अनुस्थिति से रचित, वो जो प्रवाह है वो शामिल है, क्योंकि वो तो द्रव्य का लक्षण है, वो पर्याय लक्षण ही नहीं है। तो मुझे याद है कि उसने दूर पीछे बैठे थे वहां से पूछा, पर्याय शामिल है दृष्टि के विषय में कि नहीं? तो मैंने जवाब दिया ऐसी शामिल है, ऐसी शामिल नहीं है। अब लोग कह रहे ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी की समझ में कुछ नहीं आया, तुम्हारी में भी नहीं आया होगा, आया कि नहीं आया? देखो मैं बताता हूं, समझाता हूं। देखो पर्याय कैसी, क्योंकि दृष्टि स्वयं पर्याय है ना। अब यदि वो दृष्टि का जो विषय है वो दृष्टि में नहीं आए तो समझ से नहीं होगा, आना चाहिए ना। वो उसमें दृष्टि शामिल है कि नहीं है वो बाद में बात करते हैं, पहले तो एक हो कि वो दृष्टि में आना चाहिए। तो दृष्टि में आना चाहिए माने क्या, उसी को मैं कहता हूं यहां से आके उसे यहां पर जो करंट ऐसा उदाहरण करंट है तो यहां तक जो तार नहीं छुए, वो जो लट्टू के तार आया ना, और यहां से वो बहुत बड़ा समुद्र है इकाई का बिजली का, क्या बोलते हैं उसको, पावर हाउस, एक पावर हाउस का एक तार इधर आया है और इधर इस लट्टू का तार आया है, और वे यदि यहां नहीं मिले तो लट्टू नहीं जलेगा, उसे मिलना चाहिए ना। तो उधर से दृष्टि, इधर से दृष्टि का विषय ये पावर हाउस। अब वो दृष्टि में सम्य दर्शन आना माने बल्ब का जलना, तो ये इसे छुआ क्या नहीं छुआ, क्यों समझे ना, मैंने दृष्टि का विषय वो बने के नहीं बने, उसे उसमें वो शामिल हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन जिसमें अपनापन स्थापित करना है वो जो द्रव्य है उसमें तो वो शामिल नहीं है पर्याय, ध्यान देना। लेकिन पर्याय स्वयं दृष्टि है, तो वो ऐसी शामिल नहीं होगी तो समय दर्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी शामिल नहीं है, ऐसी शामिल है। बहुत बहुत चली चर्चा सारे देश में कि भाई ऐसी ऐसी क्या है, तो हर जगह जाओ तो ऐसी ऐसी समझाओ मुझे। यही चक्कर है और कुछ नहीं। कर्मद बजा के मामले में बहुत मामला हुआ, जो मैंने इस कर्मद बजा में छह शक्तियां दी उनके मामले में भी ऐसा हुआ था कि ये वस्तु का स्वरूप पर्यायों का अनुस्थिति से रचित प्रवाह वो हमारे ख्याल में आना चाहिए। अब मैंने जितना व्याख्यान पहले दिया था उतना नहीं देता पहले, तो ये पढ़ने में कुछ मन में नहीं आता, फिर पहले पढ़ लेते फिर व्याख्यान देते, इतना ही यही तो फर्क होता है? लेकिन वस्तु स्थिति आप अब गहराई से पढ़ो, और पढ़ करके जो मैंने बताया है वो आपकी समझ में इसमें से निकलना चाहिए। समझ में तो अलग से समझ में तो आ गया मान लो, और इसमें लिखा वो, लेकिन इसमें से कैसे निकल रहा है वो हमारी समझ में आना चाहिए, तब समझना कि हमारी समझ में आया है। अब इतना असमझ में जिसके आ जाए वो तो बहुत ही बहुत धन्यवाद का पात्र है। मैं तो धन्यवाद ही दे सकता हूं, पुरस्कार तो अन्य दी देंगे सुनो। लेकिन मैं यदि किसी की समझ में ये नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, इतना ही आ जाए कि सब कुछ नक्की है और उसमें परिवर्तन कुछ संभव नहीं है, परिवर्तन की कल्पना ही भी बिल्कुल असंभव है, बल्कि बात इतनी समझ में आ जाए तो भी अपना काम होता है।